नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही खास किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं।
मतलब ये सिर्फ किताब नहीं, एक पूरा महाकाव्य है।
हाँ बिल्कुल,
मार्सेल प्रूस्ट का अला रशेस दुतों पर दू,
यानी खोए हुए समय की खोज में। सात खंड, पढ़ने में हिम्मत चाहिए।
सही कहा। और लिखने में तो प्रूस ने अपनी लगभग पूरी जिंदगी लगा दी, वो भी कोई आसान जिंदगी नहीं थी उनकी।
हाँ मैंने पढ़ा है, वो दमे की बीमारी और फिर वो उनका मशहूर कमरा कॉर्क की परतों वाला।
बिल्कुल, कहते हैं बाहर की आवाजें कमाती थीं, लेकिन शायद अंदर की दुनिया, मन की दुनिया ज्यादा साफ सुनाई देती थी।
और वही अंदर की दुनिया, यादें, एहसास, चेतना, यही तो इस उपन्यास का केंद्र है ना?
हाँ बिल्कुल। प्रूस्ट हमें ले जाते हैं 20वीं सदी की शुरुआत के फ्रांस में, वो बेले इपोक का जमाना।
मतलब पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले का दौर। बाहर से सब सुनहरा, लेकिन अंदर शायद खोखलापन भी था
और सामाजिक तनाव भी। ड्रेफस कांड जैसी घटनाएं थीं समाज में, पूर्वाग्रह, पाखंड, प्रूस्ट ये सब बहुत बारीकी से देख रहे थे।
तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रूस्ट कैसे ये दावा करते हैं कि कला, मतलब साहित्य, गुजरे हुए वक्त को वापस ला सकता है।
हाँ, और कैसे एक बिखरी हुई सी लगने वाली जिंदगी को कला के जरिए मायने मिल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है।
तो कहानी शुरू कहाँ से होती है?
कहानी शुरू होती है एक अधेड़ उम्र के कथावाचक से, नाम ठीक से पता नहीं। वो रातें जागकर गुजारता है, उसे लगता है जिंदगी बस यूं ही बीत गई, कोई मतलब नहीं निकला।
और उसका वो लेखक बनने का सपना,
वो भी अधूरा है, तो एक तरह का खालीपन है, उदासी है।
और फिर आता है वो मशहूर मेडलिन केक वाला सीन।
हाँ, वो तो जैसे प्रूस्ट की पहचान बन गया है। कथावाचक अपनी माँ की दी हुई चाय में वो छोटा सा केक डुबोता है, मेडलिन, और जैसे ही वो उसे चखता है, अचानक, मतलब बिना किसी कोशिश के, उसके बचपन की पूरी दुनिया, वो कॉम्ब्रे गांव, लोग, गलियां, एहसास, सब जैसे जिंदा उठते हैं।
वाह, इसी को वो अनैच्छिक स्मृति कहते हैं, इनवॉलंटरी मेमोरी।
बिल्कुल, वो याद जो बुलाई नहीं जाती, बस चली आती है, किसी स्वाद से, गंध से, आवाज से।
तो यहीं से उपन्यास की नींव पड़ती है।
हाँ, यहीं से वो खोज शुरू होती है। कथावाचक का संघर्ष सिर्फ गुजरते वक्त से नहीं है।
और किससे है?
अपने अंदर की सुस्ती से, समाज की चकाचौंध से, और प्यार की उलझनों से भी।
अच्छा, कॉमरे गांव में कौन कौन है खास?
प्यारी माँ है, समझदार दादी माँ है, और एक चार्ल्स स्वान है, कला के शौकीन।
और वो दो रास्तों वाली बात?
हाँ, कॉमरे में दो रास्ते हैं जो प्रतीक जैसे हैं। एक स्वान का रास्ता, जो कला, थोड़े जटिल प्रेम और बुर्जुआ जिंदगी की तरफ इशारा करता है, सामाजिक रुतबे की तरफ।
तो किरदारों की बात करें, क्योंकि प्रूस्ट के यहाँ किरदार सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो थीम को जीते हैं।
बिल्कुल, सबसे पहले तो खुद कथावाचक, जिसे हम मार्सेल कह सकते हैं, हालांकि नाम कमी आता है।
कैसा है वो?
बहुत ज्यादा संवेदनशील, चीजों को बहुत गहरे महसूस करता है, देखता बहुत गौर से है।
और उसका सफर?
वो कॉम्ब्रे के एक जज्बाती लड़के से शुरू होता है, फिर पेरिस में समाज में जगह बनाने की कोशिश करता है, इश्क में पड़ता है, जलता है, और आखिर में उसे समझ आता है कि उसकी कला का जो मसाला है वो उसका अपना बीता हुआ वक्त ही है।
तो बदलाव बाहरी नहीं, अंदरूनी है, समझ का।
हाँ बिल्कुल, वो सीखता है कि कैसे बड़े बड़े आदर्श खोखले निकल सकते हैं, कैसे प्यार असल में हमारी अपनी कल्पना का आईना होता है, और ये कि सिर्फ कला ही है जो वक्त को शायद हरा सकती है।
और चार्ल्स स्वान, वो कैसे फिट होता है इसमें?
स्वान एक तरह से कथावाचक का आईना भी है।
हाँ।
और चेतावनी भी। वो अमीर है, कला का पारखी है, सब कुछ है,
लेकिन
उसमें वो अंदर की आग नहीं है जो एक सच्चा कलाकार बनाती है। इच्छा शक्ति की कमी है शायद।
हाँ। और उसकी प्रेम कहानी ऑडिट के साथ।
हाँ, उपन्यास के अंदर ही एक पूरा हिस्सा है, स्वान इन लव। वो ऑडिट डिक्रसी के पीछे पागल हो जाता है। ऑडिट एक साधारण औरत है जिसका अतीत भी थोड़ा धुंधला है।
और स्वान का जुनून,
वो जलन, वो शक, ये सब बाद में कथावाचक की अपनी प्रेम कहानी में भी दिखता है। स्वान की कहानी दिखाती है कि जुनून कैसे अंधा कर सकता है और कैसे प्रतिभा बेकार जा सकती है।
और ऑडिट, और फिर अल्बर्टीन, ये औरतें कैसी हैं?
ऑडिट तो स्वान की नजरों से देवी बन जाती है, पर असल में क्या है कोई नहीं जानता। बाद में वही मैडम स्वान बनकर समाज में ऊपर उठ जाती है।
और अल्बर्टीन?
अल्बर्टीन सिमोनेट, वो कथावाचक के लिए प्रेम और पीड़ा दोनों का सबसे बड़ा कारण बनती है। बालबेक में मिलती है, रहस्यमयी सी।
और कथावाचक का प्यार?
वो प्यार जल्दी ही जलन और शक में बदल जाता है। कथावाचक को वहम होता है कि अल्बर्टीन के समलैंगिक रिश्ते हैं।
फिर
वो उसे पेरिस में अपने घर में लगभग कैद कर लेता है। ये द कैप्टिव वाले हिस्से में बहुत इंटेंस है वो।
ये तो बड़ा घुटन भरा रिश्ता लगता है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे प्यार कब्जा करने की इच्छा बन जाता है। फिर अल्बर्टीन भाग जाती है।
ओह।
और उसके बाद एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है।
बाप रे, फिर तो कथावाचक टूट गया होगा।
हाँ, वो शोक की एक बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया से गुजरता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो शायद अल्बर्टीन से उतना प्यार नहीं करता था जितना अपनी कल्पनाओं से, अपनी जलन से जो उसने अल्बर्टीन पर डाल दी थी।
मतलब हम दूसरे को कभी पूरी तरह जान ही नहीं सकते।
हाँ, प्रूस्ट यही कहते हैं, दूसरा हमेशा एक रहस्य रहता है।
और समाज, वो गेरमांस परिवार, बैरन डी चार्ल्स।
गेरमांस परिवार यानी पेरिस का हाई सोसाइटी, ड्यूक और ड्यूशेस। कथावाचक उनके सर्कल में घुसने के लिए मरा जा रहा है।
ड्यूशेस तो बहुत बुद्धिमान और स्टाइलिश मानी जाती हैं।
हाँ, लेकिन कथावाचक जब करीब जाता है तो उसे उस दुनिया का खोखलापन, उनकी बेरुखी, यहाँ तक कि क्रूरता भी नजर आती है।
और बैरन टी चार्ल्स, उनके बारे में बहुत सुना है।
चार्ल्स वो तो शायद लिटरेचर के सबसे कॉम्प्लेक्स किरदारों में से एक हैं। ग्वर्मेंट्स परिवार के हैं, बहुत घमंडी, बुद्धिमान, कला के जानकार।
लेकिन
बाहर से वो जितने पौरुष वाले दिखते हैं, अंदर से वो समलैंगिक हैं। और ये राज कथावाचक को अचानक पता चलता है।
अच्छा।
हाँ, उनका जीवन कुंठाओं से भरा है और उपन्यास में हम उनका पतन देखते हैं, एक रौबदार आदमी से एक दयनीय बूढ़े तक। वो उस समाज के पाखंड का प्रतीक हैं।
तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, पूरे समाज का एक्सरे जैसा है।
बिल्कुल। चलिए थोड़ा कहानी के फ्लो को देखते हैं खंडों के हिसाब से। पहला, स्वान्स वे।
इसमें बचपन, मैडलिन केक और स्वान की कहानी, तो स्मृति और प्रेम।
हाँ, यहीं से पता चलता है कि अतीत मरा नहीं है, बस सोया हुआ है। फिर आता है विद इन अ बर्डिंग ग्रोव।
किशोरावस्था, बालबेक।
हाँ, वो बालबेक जाता है, चित्रकार एल्स्टियर से मिलता है। एल्स्टियर उसे चीजों को अलग नजरिए से देखना सिखाता है, कला का नजरिया।
और यहीं अल्बर्टीन से मिलता है।
यहीं अल्बर्टीन और उन लड़कियों के झुंड से मिलता है। ये उसके कलात्मक नजरिए के बनने का दौर है। प्रूस्ट के वो लंबे घुमावदार वाक्य भी शायद यही दिखाते हैं, चेतना कैसे बहती है, उलझती है।
फिर द ग्वेरमैन्स वे।
इसमें वो पेरिस के हाई सोसाइटी में घुसने की कोशिश करता है और उसका मोह भंग होता है और यहीं उसकी दादी माँ की मौत होती है।
ओह, ये तो बहुत दुखद रहा होगा।
हाँ, ये एक बड़ा झटका है। उसे समय की क्रूरता का, मौत की सच्चाई का गहरा एहसास होता है।
अगला, सोडोम एंड गोमोरा।
इसमें बैरन डी चार्ल्स का राज खुलता है, समाज के छिपे हुए पहलू सामने आते हैं और साथ ही अल्बर्टीन को लेकर कथावाचक का शक और जलन बहुत बढ़ जाते हैं।
सच क्या है, जो दिखता है या जो छुपा है, ये सवाल उठता है।
बिल्कुल। फिर आते हैं द कैप्टिव और द फ्यूजिटिव।
अल्बर्टीन वाले हिस्से, कैद, फरारी और मौत।
हाँ, ये प्रेम, जलन, कब्जा और खोने के दर्द का शायद सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है लिटरेचर में। कथावाचक शोक और यादों के बारे में बहुत सोचता है। वो समझता है कि दुख भी बदलता है, यादें भी धुंधली पड़ती हैं।
और फिर आखिरी खंड, टाइम रीगेन्ड।
हाँ, समय की वापसी। कई साल बीत चुके हैं, पहला विश्व युद्ध हो चुका है, कथावाचक पेरिस लौटता है, एक पार्टी में जाता है।
और वहां
उसे पुराने सब लोग मिलते हैं, लेकिन सब बदल गए, बूढ़े हो गए, समय ने सबको तोड़ मरोड़ दिया है। वो बहुत निराश होता है
कि सब खत्म हो जाता है।
हाँ, लेकिन तभी पार्टी में घुसते वक्त अचानक फिर से कुछ अनैच्छिक स्मृतियां उसे घेर लेती हैं।
फिर से?
जैसे पैर के नीचे एक उबड़ खाबड़ पत्थर आता है, चम्मच के टकराने की आवाज सुनता है, नैपकिन का टेक्सचर महसूस करता है और बत्ती जल जाती है।
क्या क्या समझ आता है उसे?
उसे समझ आता है कि कला का असली काम क्या है। वो है इन गहरे जरूरी लम्हों को वक्त के बहाव से बाहर निकालना।
अच्छा।
उनके छिपे मतलब को समझना और उन्हें साहित्य के जरिए हमेशा के लिए जिंदा कर देना।
तो जो जिंदगी उसे बेकार लग रही थी,
वो बेकार नहीं थी।
हाँ।
वो सारा अनुभव, दुख, यादें, वही तो उसकी किताब का कच्चा माल था। और उपन्यास खत्म कहाँ होता है?
कहाँ?
ठीक वहीं जहाँ कथावाचक फैसला करता है कि वो अब वही किताब लिखना शुरू करेगा जिसे हम अभी पढ़ के खत्म करें।
अरे वाह, मतलब कहानी घूमकर वहीं आ जाती है, कमाल है।
हाँ, एक घेरा पूरा होता है।
तो मुख्य विषय क्या निकले? पहला तो स्मृति जाहिर है, अनैच्छिक बनाम स्वैच्छिक।
हाँ, जानबूझकर याद करने से सिर्फ तथ्य मिलते हैं, लेकिन वो अचानक आने वाली याद ही अतीत के असल सार तक ले जाती है, उसे जिंदा करती है।
तो दूसरा?
प्रेम और ईर्ष्या, जो अक्सर दुख देते हैं। बिल्कुल, हम असल इंसान से नहीं, अपनी बनाई छवि से प्यार करते हैं, और क्योंकि दूसरे को जान नहीं सकते तो जलन होती है, शक होता है।
तीसरा, कला। कला ही बचा सकते हैं।
हाँ, कलाकार का काम है सच को खोजना और उसे ऐसी शक्ल देना जो वक्त से परे हो। कथावाचक की पूरी यात्रा यही खोज है।
चौथा, समय और समाज। समय सब बदलता है, नष्ट करता है, और समाज का खोखलापन।
हाँ, प्रूस्ट समाज के दिखावे पर खूब चोट करते हैं, चाहे वो पुराना अभिजात वर्ग हो या नेहा अमीर।
और पांचवा, कि हमारा कोई एक पक्का मैं नहीं होता।
हाँ, ये भी बहुत मॉडर्न विचार है। हम बदलते रहते हैं, हमारी पहचान, प्यार सब वक्त के साथ बहता है। सिर्फ यादें और कला शायद इन टुकड़ों को जोड़ पाती हैं।
इस किताब को पढ़ना वाकई एक गहरा अनुभव है। भाषा थोड़ी मुश्किल है, वाक्य लंबे हैं।
हाँ, धैर्य चाहिए, लेकिन ये पाठक को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है, अपनी यादों, अपने एहसासों पर ध्यान देने को कहती है।
दादी माँ या अल्बर्टीन के गुजर जाने का वर्णन बहुत मार्मिक है।
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी का मतलब क्या है। शायद बाहरी कामयाबी नहीं,
बल्कि अपने अनुभवों को समझना।
हाँ, प्रूस्ट का वो कोट याद है, खोज की असली यात्रा नए नजारे देखने में नहीं, नई आंखें पाने में है।
बिल्कुल, ये उपन्यास वही नई आंखें देने की कोशिश करता है।
तो एक तरह से ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे अपने अतीत की गहराइयों में ही शायद असली मतलब छिपा है,
और कला उसे बाहर निकालने का एक जरिया है, एक रास्ता।
हाँ, और ये भी कि एक साधारण सी दिखने वाली जिंदगी भी अगर ध्यान से देखी जाए तो कितनी जटिल और खूबसूरत हो सकती है।
अनिवार्य समापन पंक्ति, अनिवार्य समापन पंक्ति। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।